7 अप्रैल दिन शुक्रवार, स्वीकार कीजिए मेरा वंदना का नमस्कार। अमेरिका का बयान, सीरिया पर संभावित सैन्य कार्रवाई पर हो रही है बात, कहा सीरिया में अब असद का रोल नहीं।
There would be no role for him to govern the Syrian people.
इस बीच अमेरिका दौरे पर पहुंच चुके हैं चीन के राष्ट्रपति। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आज आएंगी भारत, कई अहम समझौतों की उम्मीद। साथ ही जानेंगे कि क्या सिर्फ दलाई लामा ही है भारत से चीन की नाराजगी की वजह।
चीन की नाराजगी इस बात पे भी है कि जापान के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव बातें कही हैं।
होगा आईपीएल का हाल, पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। सीरिया में हुए रासायनिक हमले के बाद अमेरिका सीरिया पर फौरी सैन्य कार्रवाई के बारे में विचार कर रहा है। सीरिया में रासायनिक हमले की निंदा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को लेकर उनकी सोच में बड़ा बदलाव आया है। अमरीका में कुछ अधिकारियों ने सीरिया पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है, वहीं कुछ अधिकारियों ने रूस को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इससे पहले अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स ने कहा था कि सीरिया के भविष्य में राष्ट्रपति बशार अल असद की कोई भूमिका नहीं होगी।
There is no doubt in our minds, and the information we have
supported... हमारे मन में कोई शक नहीं है और जो जानकारियां हैं वो भी यही कहती हैं कि सीरिया और राष्ट्रपति बशार अल असद के तहत सीरिया सरकार ही इस हमले के लिए जिम्मेदार है। असद की भूमिका को लेकर रूस की सरकार को ध्यान से सोचना होगा। भविष्य में असद की भूमिका क्या होगी ये साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह के काम वो कर रहे हैं उससे नहीं लगता कि सीरियाई लोगों पर उनका शासन हो, ऐसी कोई भूमिका उनके लिए रह जाएगी। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के शब्द। वहीं सीरिया के विदेश मंत्री वली मुअल्लम ने बीबीसी से कहा कि खान शेखोन में मंगलवार को हुए कथित रासायनिक हमले की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी से जांच कराने के लिए सीरिया तैयार है, लेकिन इसके लिए वो कुछ शर्तें भी सामने रखते हैं।
इट हैज टू बी नॉट पॉलिटिसाइज्ड, इट हैज टू बी द मेंबर ऑफ दिस।
इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इस कमेटी में कई देशों के सदस्य होने चाहिए और दमिश्क से इसके काम की शुरुआत होनी चाहिए। अगर ये शर्तें मान ली गईं तो सीरिया रूस के साथ कमेटी को लेकर अपने संदर्भ में सोचेगा। मैंने ये नहीं कहा कि हमें ये सब कुछ मंजूर है, लेकिन हाँ, इन शर्तों पर हम सोचेंगे। ये थे वलिद मौलम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहली मुलाकात के लिए अमेरिका के फ्लोरिडा पहुंचे हैं, जहां ट्रंप अपने मार ए लागो रिसॉर्ट में उनकी अगवानी कर रहे हैं। ट्रंप ने शी जिनपिंग के सम्मान में आयोजित किए गए भोज में शामिल पत्रकारों को बताया कि उन्हें शी जिनपिंग के साथ बेहतर रिश्तों की उम्मीद है। दोनों नेताओं के बीच भारत के समय के अनुसार आज रात संपन्न होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार और उत्तर कोरिया जैसे मसलों के अहम रहने के आसार हैं। एयर इंडिया के कर्मचारी से कथित मारपीट के सिलसिले में चर्चा में आए शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू को एक पत्र लिखकर विमान में मारपीट की घटना को लेकर अफसोस जताया है। रविंद्र गायकवाड़ महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से शिवसेना के सांसद हैं और पिछले महीने चप्पल से एयर इंडिया के कर्मचारी को मारने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उन पर 2 FIR दर्ज की गई और कई एयरलाइन कंपनियों ने उन पर बैन लगा दिया था। रविंद्र गायकवाड़ ने उड्डयन मंत्री से एयरलाइन कंपनियों के से बैन हटाने की गुजारिश भी की है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मेक्सिको के विदेश मंत्री लुइस विदेगेरे ने कहा है कि अमेरिका को मेक्सिको में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का सम्मान करना चाहिए। उनका ये बयान अमेरिका के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी जॉन केली के ये कहने के बाद आया है कि मेक्सिको में वामपंथी दलों की जीत से मेक्सिको और अमेरिका दोनों के लिए ये ठीक नहीं होगा। वॉशिंगटन दौरे पर आए लुइस विदेगेरे ने जॉन केली से कहा कि मेक्सिको के चुनाव का अमेरिका के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। व्यापार और गैर कानूनी आप्रवासियों को लेकर आजकल दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत आप सुन रहे हैं वंदना के साथ, रेडियो के अलावा bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी। कार्यक्रम का आगाज आज अमरीका से, जहां से दो बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि सीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर बात चल रही है, और दूसरा है चीनी राष्ट्रपति का अमरीका दौरा। तो पहले बात करते हैं सीरिया की। अमरीका से आ रही खबरों के मुताबिक सीरिया के खिलाफ संभावित सैन्य अभियान को लेकर पेंटागन और व्हाइट हाउस में विस्तृत बातचीत चल रही है। अमरीका के विदेश मंत्री ने कहा है कि सीरिया के भविष्य में राष्ट्रपति बशर अल असद का कोई रोल नजर नहीं आता। अब मंगलवार को रिपोर्टें आई थी कि सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हमला हुआ है, जिसमें करीब 28 बच्चों समेत कई लोगों के मारे जाने की बात सामने आई थी। कल ही तुर्की ने भी कहा है कि पीड़ितों के शरीर की जांच से पुष्टि होती है कि वहां रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अमरीका में हमारे संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, यहाँ अगर इन बातों पर गौर करें तो अमरीका की नीति में बड़े परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं।
जी हाँ बिल्कुल वंदना, एक हफ्ते के अंदर काफी एक आप कह सकती हैं नाटकीय तौर पर आसमान जमीन का जिसे अंतर कह सकती हैं। आज राष्ट्रपति ट्रंप जब मारालागो फ्लोरिडा में अपने रिजॉर्ट में जा रहे थे, जहां चीन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होनी थी, उस विमान पर उन्होंने कहा कि सीरिया में जो हुआ है वो घोर अपराध है जो असद ने किया है। बशर अल असद के बारे में वो जिक्र करते हुए, वो भयावह है, मानवता के नाम पर कलंक है, और इसलिए वहां कुछ होना चाहिए। ये कुछ क्या होगा इस पर उन्होंने कुछ साफ तौर से नहीं कहा, लेकिन जो हमें खबर मिल रही है अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से, उसके अनुसार ट्रंप प्रशासन फौजी कार्रवाई के लिए मन बना रहा है। इसमें सीरियाई फौजी ठिकानों पर हमला और सीरियाई एयरफोर्स की को उड़ान भरने से रोक दिया जाए, उससे संबंधित कार्रवाई पर गौर किया जा रहा है। लेकिन वहां रूस की सेनाओं की भी मौजूदगी है और ये पूरे मामले को और जटिल बना रहा है।
जी,
प्रशासन से राष्ट्रपति ट्रंप, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री मैटिस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सबके सुर एक जैसे सुनाई दे रहे हैं और पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि कोई कड़ा पैगाम दिए जाने की तैयारी हो रही है। अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने ट्रंप को ब्रीफ किया है और यहां पर पूरी अमरीकी मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही है कि हो सकता है ये हमला अगर होना होगा तो बहुत जल्द भी हो सकता है।
तो सीरिया के खिलाफ संभावित कार्रवाई के आसार नजर आ रहे हैं। ब्रजेश, आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, हम आपके पास थोड़ी ही देर में फिर से लौटेंगे। और इसी घटनाक्रम के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमरीका पहुंचे हुए हैं। अमरीका और चीन करीब 11,000 किलोमीटर के फासले पर बसे दो देश, दुनिया की दो बड़ी शक्तियां, दोनों का दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना प्रभाव है। यूं तो राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुके हैं, लेकिन चीनी राष्ट्रपति से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। पूरे ब्यौरे के साथ हैं हरिता कांडपाल।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए अमरीका के फ्लोरिडा में हैं। दोनों देशों के बीच होने वाली द्विपक्षीय बातचीत में जिन मुद्दों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, उनमें व्यापारिक रिश्तों के अलावा उत्तर कोरिया का मसला भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीका और चीन के व्यापारिक रिश्तों में असमानता को लेकर चीन पर कई बार निशाना साध चुके हैं। इस पर अमरीका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने ये संकेत दिए।
cooperative and results oriented trajectory.
हम ऐसी नीतियां चाहते हैं जो सकारात्मक और रचनात्मक हों और सहयोग और परिणाम देने वाली हो, जिसमें दोनों देश बराबर के हिस्सेदार हों। ये थे रेक्स टिलरसन के शब्द। इसके अलावा अमरीका उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने के लिए चीन से उसकी आर्थिक ताकत इस्तेमाल करने की उम्मीद करता है। इसके अलावा चीन अमरीका से ताइवान को हथियारों की बिक्री के मसले पर आश्वासन की उम्मीद करता है। वन चाइना नीति के तहत चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत कर ट्रंप ने चीन को चिंता में डाल दिया था।
तो दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी मुलाकात हुई है। सीधे फिर से जुड़ते हैं ब्रजेश उपाध्याय के साथ, जो इस बैठक पर भी नज़र रखे हुए हैं। ब्रजेश, क्यों अहम है इन दोनों राष्ट्रपतियों की ये बैठक?
देखिए आप कह सकते हैं कि ट्रंप प्रशासन की अब तक की सबसे अहम कूटनीतिक मुलाकात मानी जा रही है। ट्रंप दो दिन पहले एक ट्वीट के जरिए कह चुके हैं कि ये बेहद मुश्किल बातचीत होने जा रही है। बंद दरवाजों के पीछे जो जटिल बातें होंगी उससे पहले दोनों नेताओं का के बॉडी लैंग्वेज को देखा जा रहा है। अभी तक काफी दोस्ताना माहौल नजर आया है, जो तस्वीरें आ रही है वहां से, और जो अंदर से जो डिनर हुआ है वो खत्म हो चुका है। अब हमारे पास ये खबर आ गई है, चीनी पक्ष खास तौर से ये देख रहा है कि ट्रंप की भावभंगिमा या जो दूसरे प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं हो जिसे चीन में अपमानजनक माना जाए। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के समर्थक ये देख रहे हैं कि जिस चीन को ट्रंप चुनाव अभियान में हर पल खरी खोटी सुना रहे थे, अमरीकी नौकरियां धोखे से चुराने का आरोप लगा रहे थे, उसके साथ वो क्या रुख अपनाते हैं। लेकिन ये तो ऑप्टिक्स जिसे हम कहते हैं उसकी बात हुई। चीन और अमेरिका के बीच 300 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, यानी जो चीन के हक में है। ट्रंप उस पर किस तरह की कटौती करवा पाएंगे उस पर नजर होगी। वैसे ट्रंप ने कहा है उस रात्रि भोज के दौरान कि अभी तक मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, लेकिन ये हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है
जी।
उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर लगाम कसने के लिए चीन आक्रामक तेवर अपनाए, उसके लिए काफी दबाव डालने की कोशिश करेंगे ऐसा माना जा रहा है। और कल जब फिर इन दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, एक वर्किंग लंच है यानी अमेरिका में जब शुक्रवार होगा, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह के बयान निकल कर आते हैं। लेकिन यहां मैं यही बताना चाहूंगा कि इस वक्त सबकी नजर सीरिया पर है और काफी हद तक चीन और दोनों राष्ट्रपतियों की जो मुलाकात है उससे ध्यान हट सा गया है इस वक्त।
जी बिल्कुल, दोनों ही बहुत अहम खबरें हैं और इन दोनों पर एक तरह से अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ब्रजेश उपाध्याय। और अभी अभी तस्वीर भी एक जारी हुई है जिसमें ट्रंप हैं और जो चीनी राष्ट्रपति एकदम मुस्कुराते हुए बैठे हुए हैं, तो इन पर हमारी नज़र दिन भर बनी रहेगी।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्ज पर।
बात चीन की चली है तो भारत चीन रिश्तों की भी बात कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों में एक तरह का वाक युद्ध चल रहा है। अमेरिका से उलट भारत और चीन, इन दोनों देशों के बीच भौगोलिक दूरियां तो नहीं हैं लेकिन मतभेद बहुत हैं। ताज़ा टकराव शुरू हुआ जब धर्मगुरु दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश दौरे को लेकर चीन नाराज हो गया। चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है जबकि भारत ये कहता रहा है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीनी अखबारों में भारत के रुख की आलोचना भी हो रही है। मैंने कुछ ही देर पहले पूर्व एशिया और चीन मामलों के विशेषज्ञ राहुल मिश्रा से बात की और पूछा कि आखिर चीन दलाई लामा को लेकर इतना नाराज क्यों है।
देखिए इसके पीछे दो वजह हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि दलाई लामा के मुद्दे पे चीन का प्रतिरोध और चीन का जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा हर देश के साथ ऐसा ही रहा है, ये भारत के साथ कोई खास बात नहीं है। इसके पहले जब दलाई लामा मंगोलिया गए हुए थे तो मंगोलिया के साथ भी चीन ने इसी तरह का बर्ताव किया, और बाकी देश जो भी ऑस्ट्रेलिया में दलाई लामा को काफी पहले रिसीव किया गया था तब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चीन ने इसी तरह का व्यवहार किया था। तो मुझे लगता है कि चीन का रवैया एक तरह से कुल मिला के कमोबेश ऐसा ही रहता है। लेकिन भारत के साथ संबंधों के पीछे मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय अब ये हो रहा है कि भारत और चीन सामरिक दृष्टि से एक दूसरे के कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरुद्ध दो अलग अलग खेमों में दिख रहे हैं। भारत के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि वो चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसको एक इम्पॉर्टेंट सामरिक दृष्टि से देखे। चाइना पाकिस्तान जो आर्थिक गलियारा है उसको भारत अपने जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके दृष्टिकोण से देखता है। तो इन सब चीजों को लेके भी चीन बहुत ज्यादा नाराज है। चीन की नाराजगी इस बात पे भी है कि जापान के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं और उसमें रणनीतिक और सामरिक बहुत जो एस्पेक्ट्स हैं वो निकल के आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव बातें कही हैं जो कि चीन को नागवार गुजर रही हैं। तो इन सारी चीजों के परिप्रेक्ष्य में हमें दलाई लामा के मुद्दे को देखना चाहिए। दलाई लामा का मुद्दा जो है वो सिर्फ एक सामने जो हमें चेहरा है वो दिख रहा है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हैं नेपथ्य में, जिसकी वजह से चीन का ऐसा रिएक्शन है।
चीनी मीडिया की अगर बात करें तो जिस तरह की चीजें वहां पढ़ने को मिल रही हैं कि भारत को खामियाजा भुगतना होगा, इस तरह का जो एक लहजा है, तो इसको एक वाक युद्ध की तरह ही देखें, माइंड गेम, या इससे ज्यादा कुछ भारत को सोचने की जरूरत है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें चीन के मीडिया में, खासतौर से ग्लोबल टाइम्स में जो छपता है, उसको बहुत ही मेरे ख्याल से उसको हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। वो चीन का एक माइंड गेम करने का एक तरीका है। जो देश उस पर, जो देश या जिस देश के मीडिया उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो अपने आप को परेशान करते हैं। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। चीन में हमेशा से ही एक इस तरह की चीज़ें करने की टेंडेंसीज रही हैं। अमेरिका के खिलाफ भी, जापान के खिलाफ भी, बहुत सारे देशों के खिलाफ वो इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। उससे बहुत परेशान होने की, भारत को भी उससे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
तो भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं है, राहुल मिश्रा समझा रहे थे भारत चीन रिश्तों की बारीकियां। अब बात करते हैं एक ऐसे द्विपक्षीय रिश्ते की जहां पे दोस्ती और सहयोग के सुर ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज से 10 अप्रैल तक भारत के दौरे पर होंगी। सीमा बंटने के बाद भी बंगाल के दोनों ओर कई ऐसी चीजें हैं जो आज भी दोनों ओर के लोगों को आपस में जोड़ती हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सुभाष चंद्र बोस, सत्यजीत रे या फिर सौरव गांगुली, इनके नाम पर दोनों तरफ अड्डे जमते हैं। इलिश माछिर झोल, छोला डाल या मुंह मीठा करने के लिए पीठा, बंगाल के दोनों ओर के लोग इसके जायके का आनंद उठाते हैं। हालांकि रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने बात की वीना सीकरी से, जो बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रह चुकी हैं। उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से शेख हसीना का दौरा कितना अहमियत रखता है।
बहुत ही अहम मौका है जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी आ रही हैं। इस वक्त पे मेरे ख्याल जो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हैं बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। कोई लोग कहते हैं इट्स एट अ हिस्टोरिक हाई। देखा जाए तो 10-15 बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन ड्यूरिंग दिस विजिट उनके बारे में बातचीत होगी। ट्रेड जो बांग्लादेश और भारत के बीच है बहुत बढ़ता जा रहा है, जो रेट ऑफ इंक्रीज है बहुत ही अच्छा है, तो जरूर एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेड डेलीगेशन भी आ रही है। लेकिन बात यह है कि ट्रेड को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके बीच कनेक्टिविटी नहीं है, आपके रेलवे लाइंस, रोड्स, वाटरवेज, ये चीजों पे आप कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो फिर ट्रेड कोऑपरेशन अपने आप ही इतनी बढ़ नहीं पा रही जितना होना चाहिए। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया का देखिए, अगर इफ इंडियाज गुड्स आर गोइंग थ्रू बांग्लादेश टू नॉर्थ ईस्ट, हमारे गुड्स पहुंचने से पहले बांग्लादेश गुड्स वहां पहुंचेंगे। इट्स अ वेरी बिग मार्केट फॉर बांग्लादेश गुड्स। तीस्ता अग्रीमेंट, उसके ऊपर जरूर कुछ बातचीत होगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी भी दिल्ली में आएंगी और उनकी मुलाकातें भी होंगी। गंगा बराज जो बांग्लादेश में बनेगा, इन सब चीजों पे जरूर कुछ बातचीत होगी।
क्या आपको नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने की एक नई चाहत दिखती है?
देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, नरेंद्र मोदी जी 2014 में, उन्होंने हमेशा एक नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी अपनाई है। कई ऐसे मौके मिले हैं जिनकी इनकी मीटिंग्स हुई हैं। मेरा ख्याल है कि जो बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप डेवलप हुई है, वे अच्छी गति से डेवलप हुई है। उसका मतलब ये है कि जरूर दोनों लीडर्स के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए, इस बार भी जब प्रधानमंत्री शेख हसीना जी आ रही हैं, वो राष्ट्रपति भवन में रहेंगी एज अ गेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। बांग्लादेश और भारत के बीच जो रिश्ते हैं, दोनों देशों के फायदे में, और दोनों देश ये चाहते हैं कि ये रिश्ते आगे बढ़े। इसमें एक रीजनल, सब रीजनल एस्पेक्ट भी है। बांग्लादेश, भारत और नेपाल इकट्ठे होके कोऑपरेशन कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे कोऑपरेशन कर रहे हैं, मोटर व्हीकल अग्रीमेंट पे कोऑपरेशन कर रहे हैं, और इस मीटिंग में अब म्यांमार ने भी ज्वाइन कर लिया है रीजनल कोऑपरेशन में। इट विल एक्सटेंड टू साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो। ये जो समझौते होंगे ये बहुत ही विस्तार में सारे सेक्टर्स को कवर करेंगे। इसी तरीके से अगर ये कोऑपरेशन बढ़ती जाए तो ही तो दोस्ती बढ़ती जाती है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो रिश्ते हैं, इट्स अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ साउथ एशिया, फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
तो शेख हसीना आज आएंगी भारत और रुकेंगी राष्ट्रपति भवन में।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
बात चीन की हो गई, बांग्लादेश की हो गई, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी खबर ले लेते हैं। पाकिस्तान की आबादी में युवाओं की संख्या करीब 60% है, लेकिन वहाँ की सियासत में उनकी कोई बड़ी भूमिका नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में 19 साल के बाद जनगणना हो रही है। इसी दौरान ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि देश के युवा इस बारे में आखिर सोचते क्या हैं। बीबीसी उर्दू सेवा की सहयोगी सना गुलजार ने यही जानने के लिए कुछ पाकिस्तानी युवा और युवतियों से बात की।
मेरा नाम मरीद शेख है और मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है। मैं आर्ट्स में ही पढ़ रही हूँ हुनर कला से। अभी मेरी उम्र 18 साल है। फर्स्ट थिंग एजुकेशन, पहली बात एजुकेशन। और जैसे अगर पर्सनल देखा जाए तो हर पेरेंट अलाउ नहीं करता बच्ची को यूनिवर्सिटी जाना। को होती है हज़ार प्रॉब्लम, तो कोई पठान है, कश्मीरी है, तो कुछ बैकग्राउंड पर स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल परमिशन नहीं देते इस चीज़ की। आई जब सब जब एजुकेट पढ़ेंगे, जब पढ़े लिखे बन जाएंगे, डेफिनेटली वो राइट चीज़ को सपोर्ट करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने लास्ट इलेक्शन जो 5 साल पहले हुए थे उनसे ही। एंड आई पार्टिसिपेटेड अलॉट इन लास्ट इलेक्शन। पहला टाइम है जो मैं वोट कास्ट करने जा रही हूँ अपना नेक्स्ट ईयर। स्पेशली द थंब प्रिंट जो लगेगा उसके लिए बड़ी एक्साइटमेंट है।
मेरा नाम मोहम्मद अज़र अहमद खान है और मैं नमल से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरा 3rd सेमेस्टर है और ये साल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस साल सेंसस भी होना है और मैंने अपना फ़र्स्ट वोट भी कास्ट करना है। मेरे दादा और दादी जो हैं वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल हैं और उन्होंने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि पाकिस्तान ने आपको सब कुछ दिया, आपकी जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तान है। जो सबसे बड़ा मसला मेरी नज़र में है वो करप्शन है। उसके बाद जो मसला है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वो लैक ऑफ इंटरेस्ट और जो लैक ऑफ परफॉर्मेंस है। एक तो ये कि यूथ एम्पावर हो जाएगी सेंसस से और हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी, और दूसरा ये कि हम पॉलिटिशियंस को भी ये पैगाम दे सकते हैं कि हम जो चेंज लाना चाह रहे हैं वो उस पर अमल करें, और पॉलिटिशियंस भी उनको भी ये होगा कि हम एक पावर हैं और हमारे जो राइट्स हैं वो उन्हें पूरे करने।
मेरा नाम मरियम है, मरियम तैमूर। मैं BSIR से हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। यूथ इज़ द मोस्ट क्रिएटिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज गन ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी। ना सिर्फ ये जानना कि यार मेरा भी वोट काम कर सकेगा, जो लीडर चूज होगा वो मेरी मर्ज़ी का होगा या नहीं, एक डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर अपनी मर्ज़ी का नहीं होगा। मेरी तरफ से ये कोशिश होगी एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर मैं बन जाऊँ कि वो इनक्रेजमेंट वो पुश देने की कोशिश करूँ।
तो ये थी पाकिस्तान से एक रिपोर्ट। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। फिर से लौटते हैं कार्यक्रम में ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, क्या ताज़ा समाचार है आपके पास?
जी वंदना, अभी अभी अमेरिकी अधिकारियों और अमेरिकी नेटवर्क्स की जो बातचीत हुई है उसके अनुसार सीरिया पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। कम से कम ये खबर आ रही है कि 50 टोमाहॉक मिसाइल्स जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं उन्हें अमेरिकी जो 2 नौसैनिक जहाज मेडिटेरेनियन सी में है वहां से लॉन्च किया गया है और सीरिया के जो कुछ हवाई ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो फिलहाल अभी बस ये जानकारी है, लेकिन इस पर जो आने वाले कार्यक्रम में हम और इस पर बताते चलेंगे। लेकिन ये इसे एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर देखा जा रहा है और इसके काफी बड़े परिणाम होंगे।
जी बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव है नीति में, और बहुत बहुत शुक्रिया इस त्वरित जानकारी के लिए। आज के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय जगत की कई खबरें आपको सुनवा चुके हैं, लेकिन अब रुख करते हैं भारत का। उत्तराखंड के देहरादून के एक मुस्लिम बहुल गांव में कुछ महिलाएं अपने स्तर पर नशे के खिलाफ अनूठा अभियान चला रही हैं। अभियान का नाम है वादा। सुनिए राजेश डोबरियाल की रिपोर्ट।
जाहिरा खातून देहरादून के डोईवाला स्थित गांव तेलीवाला की निवासी हैं। जाहिरा अपने गांव की उन औरतों में से एक थीं जिनके पति स्मैक पीते थे, बेचते थे और घर आकर मारपीट करते थे। 2 साल पहले गांव के ज्यादातर घरों की ऐसी ही कहानी थी। नशे की वजह से घरों में कलह थी और खाने तक के लाले पड़ रहे थे। 4 बच्चों की माँ जाहिरा का बड़ा बेटा अपने पिता की हरकतें देखकर इतना नाराज हुआ कि 2 बार घर से भाग गया। आखिर जाहिरा को विरोध में खड़ा होना पड़ा। उन्होंने पहले तो अपने पति गुलाम नबी को समझाया, दोनों के बीच मारपीट भी हुई और जब बात नहीं बनी तो जाहिरा ने पुलिस में शिकायत कर दी। जेल काटने के बाद 1.5 साल पहले गुलाम नबी बाहर आए तो उन्होंने नशा छोड़ दिया था, लेकिन नशे के आदी रहे व्यक्ति के लिए नशे की तरफ लौटने की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसे लेकर जाहिरा कहती हैं,
मैंने ये भी कह रखा मैडम को, अगर मेरा पति इन जेल छोड़ रखा, अगर कभी भी डगमगा जा तो मैं पहले अपना धक्के मारूंगी, उसके बाद मैं पुलिस बुलाऊंगी और उसको खाने दूंगी।
जाहिरा के पति और उनके 3 अन्य भाई नशे की गिरफ्त में थे और घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। जाहिरा ने अपने जेठ को भी जेल भिजवाया, वहीं उनके देवर ने तो भाभी की जिद देखकर ही नशा छोड़ दिया। हालांकि तेलीवाला में 2 साल पहले शुरू हुआ नशा विरोध का आंदोलन पुलिस और समाज के सहयोग न करने के चलते धीरे धीरे ठंडा पड़ गया था, लेकिन एक साल पहले एएसपी के रूप में तृप्ति भट्ट डोईवाला पहुंची तो उन्हें पता चला कि तेलीवाला और आसपास के गांव नशे के कारोबार के लिए बहुत बदनाम हैं।
इनकी पूरी कॉन्टैक्ट इंडस्ट्री चल रही थी ड्रग्स की ना, कि मतलब लोग बकायदा जा रहे हैं माल लेने के लिए, माल लेके आ रहे हैं, फिर पुड़िया बन के कुछ लोकली बट रही है, कुछ पहाड़ों में जा रही है।
तृप्ति भट्ट को ये भी पता चला कि पहले कुछ महिलाएं नशे के खिलाफ अभियान चला चुकी थीं, लेकिन फिर वो बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों विशेषकर महिलाओं से बात की और उन्हें नशे के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने महिलाओं के समूह को एक नाम भी दिया, वादा, यानी विमेन अगेंस्ट ड्रग्स एडिक्शन। जाहिर है इसकी सबसे पहली और सक्रिय सदस्य साबित हुई। बाद में उनके साथ दो और महिलाएं भी जुड़ी जिनके घर नशे की वजह से बर्बाद हो रहे थे। हनीफा भी उन्हीं में से एक थी। उन्होंने अपने दो भतीजों, दो दामादों को गिरफ्तार करवाया, हालांकि इससे पहले उन्होंने खुद उन्हें समझाने की कोशिश की।
यही ने बैठाकर समझा प्यार तमन्ना का, भाई हम ऐसे ऐसे जगह खड़े हैं और हम जेल में पकड़वाओगे, हाँ पकड़वाए तो देखो तुम क्या बिगाड़ लोगे हमारा, वो हमने जेल पहुँचाया।
पुलिस ने तेलीवाला के अलावा और भी कई गांवों कस्बों में वादा प्रोग्राम शुरू किया। इससे जुड़ी महिलाओं को आई कार्ड जारी किए गए ताकि उनमें आत्मविश्वास आए और वो एतराज करने वालों को जवाब देने की स्थिति में रहें। नशा करने वालों और बेचने वालों को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए महिलाएं भूखी प्यासी घंटों तक नशा करने वालों पर निगाह रखती और जैसे ही वो नशा करना शुरू करते ये पुलिस को खबर कर देती।
तो हमने रात भी देखा ना दिन देखा, ये गन्नों में बैठ कर पी रहे वहीं पहुंच गए, घर में पी रहे वहीं पहुंच गए।
तृप्ति भट्ट कहती हैं वैसे तो ये महिलाएं गांव की सामान्य महिलाएं हैं लेकिन बहुत अच्छी मोटिवेटर हैं। देहरादून में नशे की आदि एक कॉलेज छात्रा को जाहिरा से बात करने की सलाह दी गई और फिर कुछ समय तक वो लड़की जाहिरा के घर रही, बाद में उसने नशा छोड़ दिया। तृप्ति भट्ट ये भी बताती हैं कि तेलीवाला के वादा दल ने नशे का कारोबार रोकने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। जाहिरा कहती हैं पुलिस ने हमारा पूरा साथ दिया, जब भी हमने शिकायत की तुरंत पुलिस आ गई।
एक आदमी 20 साल से इस काम करता था और सारा करोड़ों का मालिक था और मतलब कोई भी पुलिस को हार नहीं दे सकती थी, रिश्वत ले होती है। लेकिन हम इस टाइम ये कोतवाल है, हमने कहा कि आप रिश्वत नहीं लेने के, तो इन्होंने कहा ठीक है, मतलब इसको आपको पकड़ना, हम आपको बताएंगे जहाँ जाएंगे जो करता है आप उसको पकड़ोगे।
वादा की सदस्यों की कोशिशों से तेलीवाला के बहुत से परिवारों में सुकून और खुशी लौटी है, हालांकि इन महिलाओं को इसके लिए तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। वादा से जुड़ी महिलाओं का दावा है कि कुछ भी हो वो अब अपने गांव में नशे को वापस नहीं आने देंगी। राजेश डोबरियाल, बीबीसी देहरादून।
तो देहरादून की इस रिपोर्ट के बाद अब बात कर लेते हैं अखबारों की समीक्षा के। हरिता, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी, सबसे पहले बात शिवसेना के सांसद की जो मारपीट को लेकर चर्चा में है। द हिंदू ने लिखा है कि रविंद्र गायकवाड़ ने मारपीट पर अफसोस जताया है और इससे पहले शिवसेना ने उन पर जो एयरलाइंस ने बैन लगाया था उसी मांग को लेकर कल संसद में हंगामा भी किया था। इसके अलावा गो रक्षकों के कथित हमले का जो मामला अलवर का सामने आया था उसकी गूंज राज्यसभा में सुनाई दी। राज्यसभा में कल केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो कुछ बताया जा रहा है वो जमीनी स्तर पर हुआ ही नहीं है और इसके बाद काफी हंगामा हुआ राज्यसभा में और तथ्यों को पेश करने का निर्देश जो है राज्यसभा
कई अखबारों में है ये खबर।
जी, ये इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो किसानों के 1,00,000 रुपए तक के ऋण माफ किए गए हैं इस पर नाराजगी जताई है, लेकिन किसने, ये सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता ने लिखा है कि आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि किसान ऋण माफी से ईमानदार ऋण संस्कृति कमजोर हो जाती है। इसके अलावा एक और खबर है जो सभी अखबारों में छाई हुई है, वो है बहराइच के जंगल में मिली एक लड़की की।
जी जी,
जनसत्ता ने इस पर लिखा है कि बहराइच के जंगल में मिली है मोगली, एक लड़की जंगलों में बंदरों के झुंड के साथ देखी गई थी और उसके बाद इसे छुड़ाया गया है, अभी वो अस्पताल में है। जनसत्ता ने ये खबर दी है।
जी, काफी अजीबोगरीब सी खबर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब बात कर लेते हैं खेल की खबरों की। आईपीएल में जो कल का मैच था पुणे के बीच में और मुंबई के बीच में, जिसे पुणे ने जीत लिया और शानदार 84 रन बनाए कैप्टन जो हैं स्टीव स्मिथ ने, अंत तक वो आउट नहीं हुए। इससे पहले जो उनको टारगेट मिला था टीम को वो था 184 रन, लेकिन अजिंक्य रहाणे और उसके बाद जो स्मिथ हैं उन दोनों ने मिलकर पुणे की तरफ से अच्छी पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलवा दी। और इसमें एक खास बात यह रही कि डिंडा जो हैं गेंदबाज हैं उन्होंने एक ही ओवर में 30 रन दे दिए, जो कि आईपीएल का शायद अब तक का सबसे महंगा ओवर माना जाएगा। तो ये थी खेल की खबरें और अब बारी हो गई है कार्यक्रम में मुख्य प्रमुख समाचारों की।
बीबीसी समाचार। अमेरिका ने सीरिया में सैन्य कार्रवाई शुरू की, कई सीरियाई वायुसेना के हवाई अड्डों पर बमबारी शुरू कर दी गई है। ये हमला रासायनिक हमले के बाद शुरू किया गया है। बीबीसी समाचार। जी तो कार्यक्रम में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला था तिलक राज भाटिया ने। सीरिया से जो बड़ी खबर आ रही है उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।